चौथा अध्याय, और चौथा अध्याय का ये एक और सुप्रसिद्ध श्लोक जिसका भाग दो आज हम लेंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। बच्चों को संभाल। तो पिछली बार हमने एक शॉर्ट रिकैप, पिछले बार का हमारा 4.9 जो कि इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिसका हमने मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल तक चर्चा की जिसकी, तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, भगवान ने एक वचन एवं वर्तमान काल का प्रयोग किया था और ये दसवां जो श्लोक वीतराग भय क्रोधा, इसमें भगवान बहुवचन एवं पूर्व काल का प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये पूरा श्लोक एट अ ग्लांस, व्हाट टू रिनाउंस, व्हाट टू प्रैक्टिस, कृष्णा अश्योर्स बाय गिविंग पास्ट रेफरेंसेस, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सच रेनन्सिएशन एंड प्रैक्टिस। तो योग्यताएं भगवत प्राप्ति की, राग भय एवं क्रोध से मुक्त होना है, भगवान में तन्मयता और भगवान पर पूर्ण आश्रित। तो हमने पिछली बार ये समझा कि राग, उसके साथ साथ जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो राग का दूसरा पहलू है द्वेष, और इसका ज्वलंत उदाहरण दुर्योधन, जिसने महाभारत में राग दिखाया भीष्म पितामह के प्रति या जिस किसी के भी प्रति, जब उसकी इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्तियां वो तृप्त हो रही थी तब तक, और फिर उन्हीं व्यक्तियों के प्रति उसने द्वेष भी दिखाया। तो राग और द्वेष के अन्य संबंधी अटैचमेंट एवर्जन, एंजॉयमेंट एंड रेनन्सिएशन विच मीन्स भोग एंड त्याग, संकल्प विकल्प, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, और कलयुग में हम देखते हैं कि इन द्वंद्वों के कारण जो कलयुगी जीव है वो न केवल हर प्रकार से मंद है बल्कि युपद्रुत, परेशान। और फिर हमने भय, जो आज के श्लोक में भगवान ने इस गुण के विषय में बताया है, तो भय की संक्षिप्त रूप में परिभाषा क्या है, भविष्य की चिंता। और इस वैराग्य शतकम से हमने 9 प्रकार के भय, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्वं वस्तुं भयम इदं ब्रुविनाम वैराग्यम एवा भयम। काफी भयानक श्लोक है। इतने सारे भय, 9 प्रकार के भय, उसकी हमने विस्तार से पिछली बार चर्चा की और हमने अंत में, यह हमारा पिछली बार का लास्ट स्लाइड था यदि आपको याद है, जिसमें इन अभय भक्तों का उदाहरण हमने लिया जिन्होंने अपने उदाहरण से ये प्रस्थापित किया कि जब कोई भगवान में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है, आश्रित रहता है, उनका आश्रय ग्रहण करता है, तो वो कैसे निडर हो जाता है। तो आज हम क्रोध, ये जो गुण बताया गया है आज के श्लोक में, वीत राग भय क्रोध, अब हम क्रोध पर हैं। तो क्रोध शब्द की व्याख्या हमारे शास्त्रों में, जैसे श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि तीन प्रकार के क्रोध, यहां पर ये थोड़ा देखने सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, सात्विक क्रोध, ठीक है, राजसिक तामसिक तक, परंतु ये सात्विक क्रोध क्या है? हाँ, सात्विक क्रोध के विषय में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वो क्रोध जो कि सुधारने हेतु हो, जैसे कि जब कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है तो उसकी शैतानियों को या जो वो शरारत कर रहा है उसे ठीक करने के लिए जब माता पिता उस पर क्रोध करते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इश्यू बेस्ड एंगर, नॉट पर्सन बेस्ड। वो अपने बच्चे से नफरत नहीं कर रहे, परंतु उसकी जो शरारतें हैं, उसकी जो शैतानी है, उस शैतानी, उस इश्यू को दूर करने के लिए जब उसके ऊपर उसके माता पिता क्रोध करते हैं, आप लोग भलीभांति जानते होंगे, तो उसे सात्विक क्रोध बताया गया है। तो उद्देश्य क्या है? सुधारना। एक माता अपने बेटे का होमवर्क करा रही थी, इतिहास ये विषय सब्जेक्ट, पूछती है महाराणा प्रताप कौन थे? पता नहीं, बच्चा चुप, कुछ नहीं बोल रहा है। डांटते हुए मां कहती है केवल वीडियो गेम खेलते रहना, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। फिर जो मां बताती हो पूरा होमवर्क किया उसने। अगले हफ्ते छत्रपति शिवाजी कौन थे? फिर चुप, कुछ नहीं पता। हर समय खेलते रहना, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तीसरे हफ्ते टीपू सुल्तान कौन था? नहीं पता, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। इतनी बार हो गया, तीन हफ्ते हो गए, फिर फाइनली इसने अपनी मां से पूछा, मम्मी सविता आंटी कौन है? मां बोलती, सविता आंटी? अनीता आंटी कौन है? अनीता आंटी? सरिता आंटी कौन है? बोले, कौन है सविता, सरिता, अनीता? बच्चा कहता है, पापा पे ध्यान दिया करो। हर समय व्हाट्सएप व्हाट्सएप। तो बच्चे ने कहा, मेरे इतिहास के पीछे पड़े हो, पापा का वर्तमान देखो और आपका भविष्य। तो आजकल बहुत सोच समझ के बच्चों को सुधारना पड़ता है। जैसे वो पाश्चात्य देश में, यूके, अमेरिका, वहां पर अगर कोई बच्चों के ऊपर क्रोध करता है तो उनको स्कूल में सब जगह बताया जाता है कि आप भाई पुलिस को बुला सकते हो, 911 डायल कर दो, यूके में 999 ये नंबर सबसे पहले वो सिखाया जाता है कि तुरंत उसको डायल कर दो, यदि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया जो भी कुछ पुलिस को बुला सकते हो तुम, और फिर पूरी कार्यवाही पुलिस करेगी। तो बेचारे वो माता पिता डरे हुए होते, एक कपल वो यूएस में मुझे मिला था, उसने कहा कि इतना वो खुद डरा हुआ, अपने खुद के बेटे से डरा हुआ, पता नहीं ये कब 911 फोन कर देगा, पुलिस को बुला देगा। तो उसने कैसे तो बुला फुसलाकर अपने बेटे को भारत छुट्टी पर लेकर आया। जैसे ही यहां पर एयरपोर्ट लैंड किया, उसने कहा अब लगा फोन, किसको लगाता है। पुलिस यहां पे और दो तीन तुझे लगा के जाएगी। तो हां, अभी इसका प्रिंसिपल समझना है कि हां, उद्देश्य है उसको सुधारना, न कि केवल अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारते रहना, उसको सुधारना। एक थिएटर में एक बच्चा चॉकलेट पे चॉकलेट खाया जा रहा था, तो उसके बगल में उस व्यक्ति उसको देख रहा था, कितना चॉकलेट खा रहा है। तो उसको कहता है, अरे तुम इतना चॉकलेट खा रहे हो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, कितना चॉकलेट खाया मैंने अभी से, पिछले आधे घंटे से मैं देख रहा हूं तुम। वो कहता है, मेरे दादाजी 125 साल जिए। उसने कहा, अच्छा जरूर चॉकलेट नहीं खाई होगी उन्हें। नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। तो तुम भी अपने काम से काम रखो, नहीं नाक मत डालो। परंतु यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि हां, क्रोध भी सात्विक क्रोध हो सकता है जब उसके पीछे का हेतु हो सुधारना, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट टर्म्स में करेक्टिव क्रिटिसिज्म। राजसिक कौन सा है? जब इंद्रिय भोग में बाधा, जैसे ही किसी व्यक्ति के इंद्रिय भोग में बाधा हो जाती है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधो विजायते, कि जब उसकी काम वासना पूरी नहीं होती है, तब उसके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है, रावण ये प्रतीक है उसका, जब भी उसकी काम वासना पूरी नहीं हुई, परिणित हुआ क्रोध में। और ये जो तीसरा प्रकार का क्रोध है, तामसिक क्रोध, निर्दोष को पीड़ा देना, बिना कारण दूसरों को दुख देते रहना, ये है तामसिक क्रोध। जैसे आजकल ये जो आतंकवादी हैं, ये लोग इस श्रेणी में है कि निर्दोष व्यक्तियों को मारते रहना और उसके पीछे एक ऐसा कारण देना जो कि उनको लगता है कि वो सत्वगुणी कारण है, धर्म के नाम पर हम कर रहे हैं। तो ये जो आतंकवादी होते हैं, इनके जो कृत्य हैं वो तामसिक क्रोध में आ रहा है। अगले व्यक्ति ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, परंतु काफिर हैं, मारो, ये जीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नस्ल के नहीं है, ये हमारे कौम के नहीं है, ये हमारे धर्म में पैदा नहीं है, या हमारे धर्म को पालन नहीं कर रहे, इसलिए काफिर है। कुछ वर्ष पहले एक बहुत रोमांचक घटना हुई, बहुत इंटरेस्टिंग, कि अफगानिस्तान का एक आतंकवादी दल, उसने इजराइल के राष्ट्रपति के जन्मदिवस पर एक तोहफा दिया, अपने देश से भिजवाया तोहफा। अब दोनों में, आप यदि जानते हो तो, इन दोनों देशों में कट्टर दुश्मनी, तो ये आतंकवादी दल का जो सरदार था, उसने ये तोहफा भिजवाया इजरायली राष्ट्रपति को उसके जन्मदिन पर। और तोहफा क्या था? राष्ट्रपति ने खोला, एक नोट भी था, आप विश्वास नहीं करेंगे, विष्ठा एक बक्से के अंदर इंसान की विष्ठा वो तोहफे के रूप में इजरायली राष्ट्रपति को, और नोट क्या लिखा था, दिस इज अ गिफ्ट फॉर द प्राउड इजरायलीज। तो उसके दो महीने बाद ये जो इसका लीडर, आतंकवाद दल का लीडर, तो इसका जन्मदिवस था, तो इजरायली उसी राष्ट्रपति ने, उसका नाम था शिमोन पेरेज, तो इस इजरायली राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से एक तोहफा भिजवाया और एक नोट उस तोहफे के साथ। और तोहफा उसने जब खोला तो तोहफा क्या था, एक मिनी लैपटॉप कंप्यूटर जो सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाला, 1800 GB, कुछ 25 GB रैम, और अलग अलग उसके अंदर ऐसे स्पेसिफिकेशंस कि आज तक इतना छोटा लैपटॉप किसी ने नहीं बनाया, तो मेड इन इजरायल लिखा हुआ। तो ये तोहफा इजरायली राष्ट्रपति ने इस अलकायदा के मुखिया को दिया। और नोट में क्या लिखा, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम द एंटायर इजरायल कंट्री टू यू, बिकॉज लीडर्स दे कैन गिव व्हाट देयर पीपल कैन प्रोड्यूस। इसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। सो बिकॉज योर पीपल कैन ओनली प्रोड्यूस शिट, दैट्स व्हाट यू कैन गिव। पंजाब में एक व्यक्ति, उसके घर में बहुत चोरियां हो रही थी, तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी कि ना कोई तो यहां पर चोर है जो नियमित रूप से चोरी कर रहा है। तो पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसने अलग अलग प्रकार से कोई डिटेक्टिव ये वो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उसने एक ऐसी युक्ति निकाली कि उसके बाद सारी चोरी बंद, CBI, CID, CRPF, CISF, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सब आ गए वहां पर। उसने पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया उसके घर के सामने, और वो ब्लैक फ्लैग ISIS का वो लगा दिया। उसके बाद में 24 घंटे उसके घर के ऊपर निगरानी, चोर की हिम्मत नहीं आने की। तो उसने लिखा, थैंक्स टू पाकिस्तान। तो ये तीन प्रकार के क्रोध बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब यदि हम ये देखें कि ये जो तीनों बताए भगवान ने आज के श्लोक में, इन तीनों में संबंध है, या ये हम कहेंगे दे आर वन फैमिली, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है ये तीनों। तो जब इंद्रिय तृप्ति में बाधा अर्थात राग, जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की, तो जब किसी व्यक्ति से अधिक बलवान वो देखता है किसी को, तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है, और जब उससे अधिक निर्बल किसी को वो पाता है तो उसके ऊपर वो क्रोध करता है। अब देखिए, हम कितनी बार ये देखे हैं कि जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, परंतु वो व्यक्ति हमसे ज्यादा बलवान है, तो द्वेष किससे होगा, जिस व्यक्ति के अंदर हमसे ज्यादा गुण होंगे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्याख्या की द्वेष की, एनवी मीन्स इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ द अदर पर्सन। कोई व्यक्ति किसी भिखारी से द्वेष नहीं करेगा रास्ते चलते, किससे द्वेष करेगा? वो व्यक्ति से जिसके अंदर उससे ज्यादा अच्छे गुण हो। सो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कहा, एनवी मीन्स टू इनडायरेक्टली अप्रिशिएट द अदर पर्सन और अनफेवरेबली अप्रिशिएट द अदर पर्सन। परंतु वो व्यक्ति यदि बलवान है तो भय, ये मुझसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है या ये मुझसे ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो भय उत्पन्न होता उस व्यक्ति से। और यदि वो निर्बल है तब उसके ऊपर क्रोध कर करके तू मुझसे आगे कैसे, तेरी साड़ी मुझसे मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो इसमें होता क्या है, ये एक ट्रायंगल है, त्रिकोण है, और इसमें हम देखते हैं ये राग भय और क्रोध, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस ट्रायंगल में। और हम बद्ध जीव जो हैं भौतिक संसार में अपने आप को इसी द्वंद में, इसी कश्मकश में हर समय पाते हैं। या तो कोई हमसे बलवान होगा या निर्बल होगा, बस भय क्रोध राग हमारे अंदर इतना, उसके वजह से भय क्रोध भय क्रोध भय क्रोध चलता रहता है। या तो भयभीत रहते हैं या फिर क्रोध व्यक्त करते रहते हैं। परंतु ये सिलसिला कब तक? मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने करना चाहता हूं, तैयार हैं आप लोग? मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा, पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं तो आप तैयार हो जाइए। चुटकुला सुनाने वाला हूं मैं, क्या सुनाने वाला हूं? जोक, चुटकुला। एक भारतीय शादी में एक अमरीकी व्यक्ति आया उस शादी को रिकॉर्ड करने के लिए। उसे भारतीय शादियां बहुत रोमांचक लगती थी, बहुत कलरफुल लगती थी। तो वो, अब देखो अंतर क्या है विदेशी शादियों में और भारतीय शादियों में, मैं देख रहा था, ये थोड़ा चुटकुले से हट के अभी याद आया मुझे, कि विदेश में जो दुल्हन होती है वो सफेद पहनती है शादी में, भारत में वो सफेद कब पहनती है? जब दूल्हा ऑफ हो गया, ऑफ। इसको कहते हैं विपरीत संस्कृतियां। तो ये अमरीकी व्यक्ति ये बहुत क्यूरियस था कि ये जो भारतीय शादियां, तो इसने वो पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो दुल्हन से इसने पूछा कि ये रेड डॉट क्या है, व्हाट इज दिस रेड डॉट ऑन योर फोरहेड? तो इसने बहुत सुंदर जवाब दिया, इसने कहा, यू सी योर कैमरा, व्हेन यू प्रेस द रिकॉर्डिंग बटन द रेड डॉट इज ब्लिंकिंग। रिकॉर्डिंग बटन, आप चाहे सेलफोन में कहीं पर भी, उसका सिंबल क्या है, रिकॉर्डिंग का सिंबल क्या है? रेड डॉट। तो इसने कहा, व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड इन इंडिया द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स फॉर द हस्बैंड। अब मैं आपको एक और चुटकुला सुनाऊंगा। एक बार एक भारतीय शादी में अमरीकी व्यक्ति जिज्ञासु वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, और उसने अपना वीडियो कैमरा रखा, दुल्हन से पूछा ये रेड डॉट क्या है, दुल्हन ने कहा जस्ट लाइक द रिकॉर्डिंग बटन, इट इज रेड इन कलर, इट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग, सो व्हेन अ वुमन गेट्स मैरिड देयर इज द रिकॉर्डिंग विच स्टार्ट्स। कोई हंसे नहीं आप, है ना, कोई नहीं हंसा। अब बहुत ही गंभीर लेसन है, जब एक ही चुटकुले को हम बार बार सुनते हैं तो हमारी हंसी कम होती रहती है, और बंद हो जाती है। तो जब एक ही चुटकुले को बार बार सुनते हुए हमारी हंसी वो कम होती रहती है, तो एक ही दुख को बार बार अनुभव करके हम रोते कम क्यों नहीं? रोना हमारा दुख के संदर्भ में वैसा ही बरकरार रहता, परंतु जब वही चुटकुला आपने दूसरी दफा सुना आपको हंसी नहीं आती, परंतु रोना हमारा वैसा नहीं होता है। तो यहां पर भगवान यही कह रहे हैं कि इस कश्मकश में एक बद्ध जीव अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देता है, कि उस भौतिक आसक्ति के वजह से भयभीत या तो रहता है या क्रोधित रहता है। तो इसलिए वो रजोगुण तमोगुण, तमोगुण रजोगुण, बस इसमें ही इसका आवागमन चलता रहता है, एक जन से दूसरे जन, दूसरे जन से तीसरे जन, एक योनि से दूसरी योनि, कई बार तो ग्रह बदलता रहता है, ब्रह्मांड बदलता रहता है, ब्रह्मांड भ्रमिते हमारे शास्त्रों में बताया गया। और इस सब की जो बुनियाद है वो है कृष्ण विमुख। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के विमुख हो जाते हैं, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि तुच्छ भोग इस संसार के, उनके पीछे दौड़ते फिरते हम, हमारा जो महाधन है, अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चौरैर प्रभो महाबलिभिर इंद्रिय नाम देह मोहांध कूप कुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। कि ये जो प्रवृत्तियां हमारे अंदर इंद्रिय भोग की, और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि महद कर्म, बहुत बड़ा कर्म करना पड़ता है बद्ध जीव को तुच्छ इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए। इंद्रिय भोग तुच्छ है, परंतु उसके लिए जो कसरत है, उसके लिए जो मेहनत है, वो जो कर्म है उसका, वो बृहद है, वो तुच्छ नहीं है। कर्म बृहद करना पड़ता है, मिलता तुच्छ है। आपके लिए आज का हमारा पहला वीडियो। तो ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां बताई गई है, एक है मेनिया और एक है फोबिया। तो मेनिया और फोबिया में अंतर क्या है कि बद्ध जीव जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक जीवन के प्रति पागलपन है उसके अंदर। मेनिया मतलब मेनियाक, उसके अंदर एक प्रकार का पागलपन है, और स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति फोबिया, स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति भय, उसे डरता रहता। पिछले साल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था तो फ्लाइट कुछ आधा घंटा डिलेड थी, तो वहां पर मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा दूर एक छोटा बच्चा रोज आ रहा है, और जोर जोर से पूरे एयरपोर्ट को उसने सर पे उठा लिया, इतनी जोर जोर से रो रहा था। तो उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है, और उसकी माँ उसको क्या कहती है, जो भी उसका नाम था, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, चिंटू समझ लो, चिंटू चुप हो जा, देखो बाबा जी बैठे सामने, मेरे ओर इशारा करके बोलती है, देखो बाबा जी बैठे, गुस्सा करते ना वो मारेंगे, बाबा जी आके तुमको बहुत डांटेंगे, उसे रोते नहीं। वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा है। फिर हुआ क्या कि वो बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुआ तो मैं उसी डायरेक्शन में गेट था, तो मैं उठा, जैसे मैं उठा ये बच्चा और जोर जोर से बाबा जी आ रहा है। तो ये माँ ने उस अपने बच्चे के जहन में क्या डाल दिया कि जो ऐसे व्यक्ति हैं उनसे डर के रहना चाहिए, वो डरावने लोग हैं। हमारे गौरांग प्रभु के साथ एक बार हुआ था कि वो राधा गोपीनाथ मंदिर से बाहर निकले और एक महिला अपने बच्चे के साथ, तो बच्चा उनको देखते ही मम्मी भूत जोर जोर से भूत चिल्लाने लगा। ऐसा नहीं कि बड़े नहीं सोचते ऐसा, बहुत शुरुआत में इस्कॉन के मंदिर में डर के आते हैं कि पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे हमारे ऊपर, क्या जादू है इनके अंदर। तो इसलिए ऊपर से आके थोड़ा पीछे कोने में बैठ के, हाँ यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, चले जाते हैं, दूसरी बार आते हैं, अभी भी नॉर्मल, जाने पहचाने लोग हैं, आदमी हैं, सब भारतीय हैं। और पागलपन किसके प्रति पागलपन, ये जो इंद्रिय भोग उसके प्रति पागलपन रहता। एक बार एक साधु महात्मा एक गांव में, वो अपना जप किए हुए ध्यान में बैठे थे, तो जो भी उनके सामने से गुजरता पागल बुलाता, पागल 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 बुलाता, और जो भी इनको पागल बुलाता ये उनको दंडवत करते। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी, आपको जो पागल बुलाता है आप उसको दंडवत करते हो? इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, इन्होंने कहा कि देखो, उसने सही पहचाना है, मैं जो भगवान का नाम ले रहा हूं वो मुझे पागल बोल रहा है। पागल का अर्थ क्या होता है, पागल, जो पाप को गलाए। तो ये जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ये पाप को गला रहा है। तो सही कहा है। तो इसलिए यदि आप जपमाला हाथ में लेकर कहीं ट्रेन बस इत्यादि वगैरह में गुजर रहे और कोई आपको बोले पागल, तो सही बोल रहा है, क्योंकि इस प्रकार का पागलपन तो कौन नहीं चाहेगा जो हमारे पाप को गला दे। श्रीमद् भागवत में इसके विषय में बताया गया है, यत श्रृण्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसाम, कि कि भगवान का जो श्रवण कीर्तन है दो हमारे अंदर बहुत प्रमुख, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, परंतु ये दो अनर्थ, एक अनर्थ है अरति, अरति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनाकर्षण, अनअट्रैक्टिवनेस टुवर्ड्स कृष्णा, वो दूर होता है। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अध्यात्म के प्रति अरुचि है, अरति है, स्पॉन्टेनियसली। जैसे हमारे अमित देसाई प्रभु, इनके लड़के अक्षत, अक्षत मुझे पूछ रहा था, अक्षत को आप लोग पहचानते हैं, तो अक्षत मुझे पूछ रहा था कि अक्षत के मित्र अक्षत को पूछते हैं कि ये आप लोग इस्कॉन में ये जो जाते हो, ये तो जब अंग्रेज लोग भक्ति करते हैं, तो हम ये अंग्रेजों की भक्ति क्यों करें, ये अंग्रेजों की दी हुई भक्ति क्यों करें। तो अक्षत मुझे पूछ रहा था कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बोलना चाहिए। तो मैंने कहा कि पूछो उसको, तुम्हारा थोड़ा स्मार्टफोन बाहर निकालना, दिखाओ कौन सा स्मार्टफोन है, यूज करेंगे आईफोन, खाने के लिए जाएंगे मैकडोनल्ड्स डोमिनोज, जीन्स पहनेंगे लिवाइस का, तुम पिक्चरें देखोगे हॉलीवुड की, स्कूलों में जाओगे कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम, भक्ति करने के लिए नहीं, बाकी सारी चीजें अंग्रेजों की, लेकिन जो भक्ति का, तो एसेंशियली क्या है कि भक्ति नहीं करने के बहाने ढूंढते हम कि कैसे जितना हो सके दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। तो वो एक स्वाभाविक अरति, और उसके साथ साथ स्वाभाविक वितृष्णा, एक है कृष्णा और एक है वितृष्णा, कि एक विशेष तृष्णा, प्यास किसकी, इंद्रिय भोग की, ये दोनों स्वाभाविक। तो श्रवण कीर्तन करने से यत श्रृणवतो अपैति, अपैति का अर्थ है दूर हो जाए, क्या अरति वितृष्णा। तब ये जो मेनियाक और फोबिया, तो इसको समझाने के लिए एक स्टोरी है छोटी सी, जिसका नाम है मिसिंग गोट नंबर 3। तो एक विद्यार्थी, वो अपने स्कूल से छुट्टी चाहता था, छुट्टी आ नहीं रही थी, तो बहुत परेशान हो गया था स्कूल जा जाके, तो उसको छुट्टी चाहिए थी संडे से पहले। तो उसने एक तरकीब निकाली, उसने क्या किया, जब स्कूल बंद हो गया था तो शाम के समय उसने जाकर 3 बकरियों को छोड़ दिया, स्कूल के अंदर 3 बकरियों को छोड़ दिया, एक बकरी के ऊपर लिखा गोट नंबर 1, दूसरी बकरी पर लिखा गोट नंबर 2, तीसरी बकरी पर लिखा गोट नंबर 4। अब दूसरे दिन जब प्यून वगैरह वो सब स्कूल खोले, तो उन्होंने देखा सब जगह बकरी ने अपना महाप्रसाद छोड़ा हुआ है। तो पहली बकरी को पकड़ा, ये बकरी कहां से आ गई, पहली बकरी को पकड़ा, उसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, बकरी नंबर 1, बकरी नंबर 2 भी होनी चाहिए। तो ढूंढा, बकरी नंबर 2 पकड़ में आ गई, फिर बकरी नंबर 4, ये 3, बकरी नंबर 3 कहां गई। तो पूरा स्कूल उसकी तलाशी ली गई, कोई बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, बकरी नंबर 3 मिसिंग है, बकरी नंबर 3 मिसिंग है, स्कूल को छुट्टी, पहले बकरी नंबर 3 वो ढूंढने। तो हमारा जीवन भी वैसे ही है, माया देवी क्या करती है, हमारे जीवन में 3 बकरियों को छोड़ देती, बकरी नंबर 1, बकरी नंबर 2, बकरी नंबर 4, वो 3 बकरी है ही नहीं, और हम पूरा जीवन बकरी नंबर 3, बकरी नंबर 3, बकरी नंबर 3, खुद बलि का बकरा मनते, वो बकरी नंबर 3 ढूंढते ढूंढते। दिस इज What is rag, dvesh, bhaya, krodha? Looking for that which is not maya. The missing goat number three, which doesn't exist. तो अब इसके पश्चात भगवान ने आज के श्लोक में मन माया शब्द ये इस्तेमाल किया है. तो बहुत सरल है इसको समझना. भगवान ये कह रहे हैं कि जो मुझ में अपना मन लगाता है, अर्थात मेरी प्रचुरता में जो अपना जीवन जीता है, तो भगवान की प्रचुरता में जीवन जीने का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार में तथा चेतना में श्री कृष्ण प्रचुरता से हो, वो हो गया मन माया भक्त. भगवान के इस शब्द के अनुसार तो श्री कृष्ण में तन्मयता, श्री प्रभुपाद ने उसका अनुवाद इस प्रकार से किया है. मन माया का अनुवाद श्री प्रभुपाद ने किया है कि जो श्री कृष्ण में तन्मय हो. अब है, एक तरफ हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो संसार है सर्व मायामय जगत, एक तरफ संसार सर्व मायामय जगत, और एक जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है इस भौतिक संसार में रहते हुए सर्व कृष्णमय जगत उसका हो जाता है उसके लिए. अब देखिए ये कैसे संभव है, एक उदाहरण से हम आपको समझाएंगे. जैसे दूध और पानी, अक्सर हम भारत में देखते हैं कि दूध वाले जो होते हैं वो बिना दूध में पानी मिलाए नहीं रह पाते, या फिर आजकल तो पानी के अंदर दूध मिला देते हैं. तो सर्व मायामय जगत और सर्व कृष्णमय, जब हम इस मिश्रण में संसार में जी रहे हैं तो ये मिश्रण कौन सा मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण. इसलिए हम देखते हैं साधना भक्ति में जब करते समय, श्रवण करते समय पानी दूध, दूध पानी, कई बार दूध कम पानी ज्यादा, बिल्कुल हल्का सा एक चम्मच दूध होता है, बिल्कुल सब पूरा पानी होता है, ऐसी भक्ति होती है हमारी. तो कैसे आप दूध और पानी को अलग कर पाओगे? शास्त्रों में बताया गया है कि एक पक्षी है, वो है हंस. हंस के अंदर ये प्राकृतिक गुण है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है. तो उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जैसे परमहंस वो हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारे जीवन में सर्व मायामय जगत और सर्व कृष्णमय जगत उसको अलग कर कर देते हैं. ये है मायामय जगत और ये है कृष्णमय जगत. परमहंसों के अंदर ये गुण है. जैसे कि हम हमारे रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में बता रहे थे कैकेयी और विभीषण का उदाहरण. कैकेयी अयोध्या में रहते हुए राम द्वेषी बन गई और विभीषण लंका में रहते हुए राम भक्त बने रहे. अर्थात हमारे अंदर कैकेयी और विभीषण दोनों की प्रवृत्तियां हैं. हम सत्संग में रहते हुए भी प्रभु श्री राम को हमारे जीवन से निष्कासित कर सकते हैं जब मंथरा का संग करेंगे, और यदि हम प्रामाणिक हैं तो चाहे हम लंका में क्यों ना रह रहे हों, विभीषण की तरह प्रभु श्री राम की भक्ति हमारी बरकरार रहेगी. तो ये हम पर निर्भर है हम कौन से क्लब के मेंबर बनते हैं, कैकेयी क्लब या विभीषण क्लब. हम निर्माण करेंगे हमारे लिए हमारा सत्संग. तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि सर्व मायामय जगत है और सर्व कृष्णमय जगत, वही भगवान ने जो इस संसार को दुखालय अशाश्वत बता दिया। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते। क्या वो भगवान के वाक्य के विरुद्ध जा रहे हैं? हां, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना ऊपर कर लिया है कि वो इस पूरे विश्व में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं, उनकी ही शक्तियां, और वो उनका कृष्णमय दृष्टिकोण बन चुका है। इसे कहते हैं मनमया या तन्मयता। तो तन्मयता के दो उदाहरण हम लेंगे। एक है जब कोई व्यक्ति भय के कारण तन्मयता दिखाता है, और एक है प्रेम के कारण तन्मयता दिखाता है। तो नीति शास्त्रों से ये एक कहानी है। एक राज्य में एक व्यक्ति हर समय, वो राज्य के लोग इस व्यक्ति की मजाक उड़ाया करते थे, बाकी अन्य नागरिक। तो ये परेशान राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मैं एक नागरिक हूं और मेरी परेशानी ये है कि आपके राज्य के बाकी अन्य नागरिक मेरी मजाक उड़ाते हैं हर रोज, जीवन मेरा इतना मुश्किल कर दिया है उन्होंने जीना। तो राजा ने जब ये समस्या सुनी, अब राजा का उत्तरदायित्व कि वो इस समस्या का समाधान करे, तो राजा ने बहुत ही विचित्र तरीके से इसकी समस्या का समाधान किया। कुछ नहीं कहा राजा ने, चुप रहा। राजा ने अपने मुष्टंडों को बुलाया, बड़े दो मुष्टंडे आए। राजा ने कहा अपनी तलवार लेकर आओ। ये देख रहा है क्या कर रहा है राजा, मुष्टंडों को बुला लिया, तलवार मंगा रहा है। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा एक घड़े में पूरा ऊपर तक भर कर तेल लेकर आओ और इस व्यक्ति को दो। तो उसके हाथ में वो घड़ा थमा दिया तेल से भरा हुआ, और अब राजा ने इसे कहा अब तुम जाओ, पूरे राज्य में तुमको विचरण कर कर आना है इस घड़े को हाथ में लेते हुए, और एक बूंद अगर इसमें से तेल नीचे गिरा तो मेरे मुष्टंडे पीछे तुम्हारे तलवार लेकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। तुम्हारा समय शुरू, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्या समाधान है, मैं अपनी समस्या लेकर आया, ये राजा तो और समस्या मेरे जीवन में पैदा कर रहा है। अब आदेश दे चुका है राजा, टाइम शुरू हो गया है, तो ये अब लेकर गया। और इस दौरान राजा ने अपने अन्य सेवकों को भेजा पूरे राज्य में और बोला कि जाओ पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज ये व्यक्ति जिस किसी घर के सामने से गुजरेगा, जहां से भी गुजरेगा, जिस सड़क बाजार से गुजरेगा, आज राजा ने अनुमति दी है कि सब मजाक उड़ा सकते हैं। तो ये अब पूरे दिन भर वो घड़ा लिए चल रहा है, वो घड़े की ओर देख रहा है, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए उसमें से बाहर, और वो मुष्टंडे अपनी तलवार धार कर रहे हैं एक दूसरे से, उसकी आवाज, मुष्टंडे पीछे चल रहे हैं, उसकी आवाज उसको सुनाई दे रही है। ऐसे करते करते शाम बीत गई। फिर वो शाम को जब वापस राजमहल में लौटा, एक बूंद भी उसमें से गिरी नहीं थी। अपना सर संभाला, सर वैसा का वैसा था, खुश हुआ, परंतु उसे समझ में नहीं आया कि राजा ने ऐसा क्यों किया। तब राजा ने पूछा तब बताओ आज कितने लोगों ने तुम्हारी मजाक उड़ाई। तब इसको समझ में आया अरे आज तो कोई नहीं, कोई भी मजाक नहीं उड़ा रहा था। बल्कि हुआ क्या था, उस दिन सरकार मान्य था कि हर कोई इसकी मजाक उड़ा सकता है, सब, यहां तक कि कुत्ते भी भौंक रहे थे। तो राजा ने कहा क्यों आज तुम्हें उनकी आवाजें सुनाई नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे सामने वो फोकस था, और वो फोकस क्यों था, क्योंकि पीछे तलवार, मृत्यु की तलवार तुम्हारे पीछे थी। तो ये एक स्तर है तन्मयता का, जब मरता क्या ना करता, वो जो स्थिति होती है ना, मरता क्या ना करता व्यक्ति तन्मय रहता है किसी विषय वस्तु में। परंतु ये जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है कि जब कोई किसी से प्रेम करता है, तो इसके विषय में भी एक कहानी है कि एक महिला वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए हर रोज शाम के समय निकलती छुपके। तो जंगल के रास्ते से वो गुजरती, और जंगल का रास्ता पथरीला, कांटों से भरा हुआ, कई बार ऐसे कांटे चुभते, ऐसे वो पथरीले वो कंकड़ चुभते, नोकीले कंकड़ उसको चुभते कि रक्त बहने लगता। एक बार वो ऐसे ही भाग रही थी, थोड़ा देरी हो गई उसको निकलने में, तो देरी हो गई अपने प्रेमी के विषय में सोचते हुए। उस जंगल में एक साधु तपस्या में बैठे हुए ध्यानस्थ, तो साधु से टकरा गए, वो साधु आग बुबुला हुए, महिला के ऊपर बरसने लगे, चिल्लाने लगे, एक उल्टा स्त्री, क्या किया तूने, मेरा ध्यान भंग कर दिया। और ये टकराई, और बिल्कुल इसे कोई भान नहीं, आगे चलना शुरू की, ये और गुस्सा करने लगा, रुकी भी नहीं, क्षमा भी नहीं मांग रही है, ऐसी जा रही है, निर्लज्ज स्त्री, ऐसी और गालियां देने लगे, और वो जाती गई, निकल गई वो अपने प्रेमी से मिलकर। जब वापस लौट कर आती है, उसी रास्ते से ये साधु देखता है, रोकता है उसको, तू ही है वो, मुझे टक्कर मार कर गई थी। ये कहती, क्या क्या हुआ, क्या महाराज क्या हुआ। तो इसे कोई कुछ भान नहीं, साधु उसको बताने लगा, तूने क्या किया, मैं ध्यान में बैठा हुआ था। तो ये स्त्री बहुत सुंदर जवाब देती है, नहीं महात्मा जी, मुझे नहीं लगता है कि आप ध्यान में थे, क्योंकि यदि आप ध्यान में बैठे होते तो आपका ध्यान मेरे ध्यान की तरफ पक्का होता। आप कह रहे हो कि मैंने आपको टक्कर मारी, मुझे कोई ध्यान नहीं उसका, क्योंकि मुझे मेरे प्रेमी पर ध्यान था। तो ऐसे ही एक भक्त, अब इसमें से लेसन लेना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 बजे उठ के जंगल के रास्ते से जाओ। लेसन ये है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इज आउट ऑफ लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज द फेवरेबल एब्जॉर्प्शन। वो भगवान कह रहे हैं कि मुझमें किस प्रकार की तन्मयता, वो तन्मयता जो कि प्रेम के द्वारा जागृत हुई हो। अब तन्मयता के विपरीत हम क्या अनुभव करते हैं, चंचलता, जिसके विषय में अर्जुन ने गीता में 6 अध्याय में कह दिया, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़। तो हमारे अंदर जब हम साधना भक्ति में लगते हैं, श्रवण कीर्तन में लगते हैं, तो कभी कभी कुछ समय के लिए, 5 सेकंड के लिए तन्मयता थोड़ी सी आ जाती, और फिर कई बार पूरा गीतामृत कार्यक्रम, पूरा नासिक भ्रमण कर आते हम। तो हां, प्रश्न ये है, कुर्सियां भरी हुई हैं, परंतु क्या सब लोग हैं? प्रश्न क्या है, कुर्सियां भरी हुई हैं परंतु क्या सब लोग यहां पर मौजूद हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत साल पहले एक पैंटोमाइम शो हुआ था, बहुत सुंदर पैंटोमाइम शो होता है, जिसमें डायलॉग्स वगैरह नहीं होते, वो लोग अपने एक्सप्रेशन से मैसेज कन्वे करते। तो ये पैंटोमाइम शो, इसका शीर्षक था मैं और मेरा मन, कौन सा मन, चंचल मन, मी एंड माय माइंड। तो मैं ज्यादा न समझाऊं, उसके बदले आपको मैं पूरा पैंटोमाइम शो आज दिखाऊंगा। और हम सब अपने आप के जीवन में ट्रांसलेट कर सकते हैं. बहुत सुंदर तरीके से इस पेंटोमाइम शो में बताया गया है कि एक व्यक्ति और उसका मन उसके साथ क्या खिलवाड़ करता है. यहां पर ये जो है चंचलता, तो चंचलता से तन्मयता को कैसे प्राप्त करता है वो. बेसिकली ये पेंटोमाइम शो में क्या बताया गया है, चंचलता से तन्मयता. तो हम भी ये देखते समय ये अनुभव करेंगे कि हम और हमारा मन हमारे साथ क्या क्या खेल खिलाता है और कैसे हम हमारे इस चंचल मन को तन्मय भगवान में बनाए.
Pantomime show is a depiction of the daily life of you and me. Please watch it carefully as you will discover your private moments unfold now. This is me, and this is my mind.
My mind is very strong. When I'm sleeping, it's always dancing.
ये है सफर चंचलता से तन्मयता, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो भक्त भगवान में तन्मय होकर भक्ति करता है, भगवान का स्मरण उस तन्मयता से करता है, तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे शहद का जो प्रवाह होता है, हमने सबने ये अनुभव किया है कि जब आप शहद की बोतल से शहद को उड़ेलते हो तो कैसे बिना रुके निरंतर उसका प्रवाह दिखता है उस शहद का, उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त उसकी तन्मयता भगवान में उस शहद के प्रकार लगती है। उसके पश्चात अब भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उपाश्रिता, उपाश्रित और उपाश्रिता, इसमें अंतर क्या है? आश्रय का बहुवचन है उपाश्रिता। तो भगवान यहां पर यह बता रहे हैं, हमारे आचार्यों की टीका है कि पूर्व काल में अनेकों ने आश्रय लिया है बहुवचन, और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से उपाश्रिता का अर्थ है कि अनेक बार आश्रय लेने की आवश्यकता है, अनेक बार आश्रय लेने की आवश्यकता है। जैसे कि किसी रिलेशनशिप में बताया जाता है दैट यू शुड फॉल इन लव एवरी मोमेंट, सिमिलरली वी हैव टू फॉल इन लव विद कृष्णा एट एवरी मोमेंट, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एट एवरी मोमेंट। इसलिए भगवान ने यहां पर उपाश्रित नहीं बल्कि उपाश्रिता, और फिर भगवान कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता, अर्थात बहुत से लोग इस कृष्णमय ज्ञान की तपस्या से पवित्र हो चुके हैं। तो जब भगवान पूर्व काल के विषय में कहकर अब भगवान फाइनली आते हैं मद भावम आगता, जिसका अर्थ है ऐसे पवित्र जन जो कि भगवान के भाव को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी तन्मयता जिसके अंदर भगवान उनके भाव को, जैसे हमने उस पैंटोमाइम शो में देखा कि वो मन जो शुरुआत में इतने अवरोध डाल रहा था, वही मन सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है और भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो ऐसा तन्मय पवित्र शुद्ध हुआ भक्त और उसका मन, भगवान कहते हैं मद भावम आगता, मेरे भाव को वो प्राप्त करता है। तो हमारे इस श्लोक को यदि फिर से हम एक स्लाइड में संक्षिप्त रूप में देखें तो ये है कि हमारे जीवन में जब हम अभाव का अनुभव करते हैं तो उस अभाव के अनुभव के वजह से हम भक्ति मार्ग में लगते हैं, भगवान का प्रभाव, हमारा अभाव और भगवान का प्रभाव सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। और जब भगवान के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं तब जाकर हम हमारे स्वभाव को समझते हैं, और हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। और जब हम हमारा जीवन उस हमारे वास्तविक स्वभाव के आधार पर जीते हैं तब जाकर जो भगवान ने आज के श्लोक में कहा है कि मद भावम उत्थाय गोप्यो पररात्र भोगे स्मृत्वा यशोदा सुत बाल केलिम गायन्ति प्रोच्छै दधिमन्यमानो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां ये उदाहरण है मद भावम आगता, कि जब भगवान वन की ओर निकल पड़ते थे रोज सुबह अपने गवों को लेकर, पूरे दिन भर गोपियां वो भगवान श्री कृष्ण के भाव में अपना दिन बिताती, कि वो भगवान के साथ नहीं गई हैं, भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ गए हैं, परंतु यहां पर गोपियां जहां कहीं पर भी अपने घरों में वो दिन भर यही सोचती रहती कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, कब वापस लौटेंगे। इसे कहते हैं मद भावम। जब हम इस स्तर को प्राप्त करेंगे, मैं एक सुंदर उदाहरण से अंत करूंगा हमारे आज का प्रवचन, कि एक शुद्ध भक्त वो इस मद भाव को कैसे प्राप्त करता है। जैसे आपने देखा होगा एक स्याही होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग इंक, मोहर लगाने के लिए जो स्याही इस्तेमाल की जाती है। पहले राजा कोई अगर बहुत गुप्त संदेश किसी को और भिजवा दे तो उसमें हमारे पोस्ट डिपार्टमेंट में भी ये सीलिंग इंक लाल कलर की होती हो। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब किसी भक्त का हृदय भगवान की भक्ति से द्रवित होता है तो वो उस स्याही के समान है जिसको पहले पिघलाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। अब जब वो स्याही पिघल जाती है और पिघली हुई स्याही के ऊपर जब मोहर लग जाती है, अब उस मोहर को वहां से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। या कई बार उस स्याही के अंदर कोई रंग घोल दे या पीला रंग घोल दे तो जब तक वो पिघली हुई स्याही है और उसके अंदर कोई रंग घोल रहा है तो वो रंग उसमें प्रवेश कर जाता है, परंतु एक बार वो स्याही सख्त हो जाती है उस रंग को वहां से बाहर नहीं निकाल जा। उसी प्रकार से जब किसी भक्त का हृदय द्रवित होता है तो वो स्याही के पिघलने के समान है, और द्रवित कब होगा, जब भगवान का शुद्ध भाव से वो श्रवण कीर्तन करेगा। जब शुद्ध भाव से हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय की जो स्याही है ये पिघलती है, और ऐसी पिघली हुई स्याही में भगवान फिर उस रंग के तरफ प्रवेश कर जाते हैं, और एक बार भगवान प्रवेश कर गए ऐसे द्रवित हृदय के अंदर, उसके पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए अब भगवान को उसमें से कोई नहीं निकाल सकता। यहां तक कि हमारे आचार्य कहते हैं कि स्वयं भगवान भी निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते। और ये है तात्पर्य आज के श्लोक के अंतिम शब्दों का जो भगवान कह रहे हैं, मद भावम आगता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो दिल थाम कर बैठिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा समाचार हम अब देने जाने वाले हैं। हमारा अगला बुधवार 27 जुलाई हम सब के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमारे नासिक धाम में आ रहे हैं गौरांग प्रभु। हमारे अगले गीतामृत कार्यक्रम के लिए तो अगले बुधवार को श्रीमान गौरांग प्रभु, उनका प्रवचन होगा, और उन्होंने टॉपिक भी दे दिया है पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, हिंदी में होगा। तो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के और अब पूरे इस्कॉन के सुप्रसिद्ध कथाकार श्रीमान गौरांग प्रभु वो कृपा कर नासिक आ रहे हैं। तो आप लोग सब जो यहाँ पर आपके संबंधी रिश्तेदार मित्र इत्यादि जो नहीं आ सके उनको आप ये सूचना दे दीजिए, और आप भी आइए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद् गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रीमान शिक्षाष्टकम् प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो जो बहुत दिन से जिस बुक का बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा था श्रीमान गोविंद प्रभु जो कर रहे थे, करणा ऑन ट्रायल, तो बहुत बेसब्री से कई लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कर्ण को जो हीरो बना के रखा है हमारे आजकल के राइटर्स लोगों ने,